ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिणेण मिहुं वेयण महाहियारम् विविहयारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो दसवीं पुस्तक है चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार में अभी हम पृष्ठ 65 पर आ गए हैं। देखो, यहाँ योग स्थानों की चर्चा चल रही है। ये योग की बात आई कहाँ से, तो उसके लिए हम थोड़ा 57 पेज पर देखते हैं कि इस 28 नंबर का सूत्र, इस प्रकार परिभ्रमण करके मिला जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा। इस सूत्र का अर्थ करते हुए योग यव मध्य क्या है वो बात समझ रहे हैं। योग यव मध्य कहने से दो प्रकार पाए जाते हैं, एक काल की अपेक्षा योग यानी यव मध्य रचना और एक जीव योग यव मध्य रचना। तो उसमें से यहाँ कौन सा वाला योग यव मध्य लेना है उसकी चर्चा करते हुए पहले में पहले काल यव मध्य समझाया और फिर जीव योग मध्य समझा रहे हैं। काल योग यव मध्य में हमने देखा था कि जो तीन प्रकार के योग पाए जाते हैं, योग स्थान तीन प्रकार पाए जाते हैं, उसमें उपपाद योग, एकांत अनुवृद्धि योग और परिणाम योग। उपपाद योग तो एक समय का है, एकांत अनुवृद्धि भी हर समय बढ़ता हुआ योग है, यानी एक ही योग में लगातार रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो तो परिणाम योग स्थानों में ही संभव है। तो ऐसे लगातार कितने समय तक वही का वही योग होगा जो उसके पहले की हानि या वृद्धि होने के पहले, तो कभी कभी दो समय तक, कभी तीन समय तक, ऐसे करते करते 8 समय तक वही का वही योग रह सकता है एक जीव का कुछ। तो उसकी अपेक्षा जो यव मध्य रचना की जाती है 8 समय तक रहने वाले जीवों समयों को वहां बीच में लेना 8 समय के लिए, फिर 7 समय के लिए दोनों ओर ले लेंगे, तो वहां जीवों की संख्या कितनी है क्या है इसकी हमने बात की थी। ये तो काल की बात हुई। अब जो जीव के आधार के यानी जीवों की संख्या के आधार से जो योग यव मध्य रचना होती है, उसमें हमने देखा कि त्रस पर्याप्त जीवों के जितने योग स्थान है, परिणाम योग स्थान जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, उसमें से बीच वाला ऐसा कोई योग स्थान है कि जहां जीवों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है, तो उसको सेंटर में रखते हुए दोनों ओर ये टेपरिंग हो जाएंगे जीवों की संख्या, दोनों ओर यानी जघन्य की ओर भी और उत्कृष्ट की ओर भी जीवों की संख्या क्रम से कमती हो जाएगी। तो उसको भी ये यव मध्य के रचना के द्वारा समझाया है, कल भी हमने बात की थी। तो ये तो गुणहानी रूप से हमने देखे दोनों ही ओर, अधस्तन गुणहानी और उपरीतन यानी नीचे की ओर और ऊपर की ओर गुणहानी अलग अलग बताई है। अब ये जो गुणहानी में जो द्रव्यों की संख्या है जीवों की संख्या, वो निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स है। हमने जैसे देखा था कि नीचे की ओर से अगर हम शुरू करेंगे तो बढ़ते बढ़ते हैं, उसको प्रक्षेप कहा था। इन नीचे की ओर से जघन्य योग स्थान में हमने मान लिए थे कि 16 जीव है, तो उसके अगले योग स्थान में 4 ज्यादा है, 4-4 से बढ़ते, नीचे से शुरू किए ना हमने, तो 16 फिर 20 फिर 24 और फिर 28 के बाद 32 के बाद ये जो बढ़ने का है, जो 4 का प्रक्षेप था वो अभी 8 का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो संख्याएं निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स अभी बताने वाले हैं, इसके आगे भी। अभी तो हम यहाँ आए हैं, कल हमने श्रेणी प्ररूपणा देखी थी, तो श्रेणी का अर्थ ही ये है कि जो बढ़ते हुए जो हमने देखे थे ना प्रमाण, इसका श्रेणी शब्द बहुत बार हमने सुना है, जैसे श्रेणी चढ़ना भी हमने देखी थी या गुण श्रेणी रचना भी देखी थी। वहां श्रेणी का अर्थ क्या है, विशिष्ट क्रम से यानी गुणित क्रम से वो बढ़ता हुआ। तो यहाँ भी कुछ अधिक 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 है, 16 का 20 हुआ, 20 का 24 हुआ, 24 का 28 हुआ, 28 का 32 हुआ, ये जो कितना बढ़ता गया है तो उसको यहाँ श्रेणी कहा है। ये जो हमने कल पढ़ा था 63 पेज पर, श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की है लिखा था, नीचे के नीचे से चौथी लाइन जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें दो शब्द आए थे, अनंत रूपनिधा और परम्परोपनिधा। अनंत रूपनिधा और परंपरा उपनिधा, अनंत यानी वो संख्या कैसी निकालनी है, जो हमने देखी थी ना कितना कितना प्रक्षेप बढ़ता जाएगा उसका प्रमाण कैसे निकालना, या परंपरा उपनिधा में आगे समझाएंगे, एक गुणहानि से दूसरे गुणहानि में डबल हो जाता है, ये जो उसका गुणित प्रमाण है उसको बताने वाले ये दो प्रकार से श्रेणी बताई है इसमें। अभी उसमें से ये अनंत रूपनिधा की बात यहाँ चल रही है, उसको उन्होंने बताया था कि इसको जरा फिर दोबारा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे, कि जीव गुणहानि शलाका कितनी है, तो पल्ले के असंख्याते भाग है, जो हमने देखे थे कि नीचे की 3 और ऊपर की 5, टोटल 8 देखी थी, और संपूर्ण जो योग स्थान का अध्वान जो है काल है, कितने योग स्थान है उसको हमने 32 मान लिए थे, उसमें भाग देने पर एक आयाम गुणहानि आती है ना, गुणहानि की जो लंबाई है, गुणहानि कितने की है, कितने स्थानों को एक गुणहानि कहा है, कितने स्थान जाने पर जीवों की संख्या डबल, नीचे से देखेंगे तो डबल, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आधी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं गुणहानि। तो अपने एग्जाम्पल में 32 हमने योग स्थान देखे थे और एक एक गुणहानि यानी नाना गुणहानि 8 देखी थी, तो एक गुणहानि हो जाएगी 4 की, स्पर्धक नहीं योग स्थान, 4 योग स्थान जाने के बाद जीवों की संख्या। आप पहले जो निषेक आप कहते थे वैसा निषेक कहना उसको, कर्म रचना में जिसको हमने निषेक देखा था, इतने निषेक जाने के बाद कर्मों की संख्या आधी होती है, उसको निषेक कहा था, नहीं वर्गणा नहीं कह सकते, अब वर्गणा की बात आगे आएगी। एक एक गुणहानि में स्पर्धक और वर्गणाएं पाई जाएंगी, क्योंकि एक एक गुणहानि में अभी योग स्थानों को हमने कहा था, 4 योग स्थानों को यहाँ एक गुणहानि कहा है, नहीं योग स्थान इज इक्वल टू, हमने देखा था ना एक योग स्थान में क्या क्या आता है, तो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है उसमें कितना कितना योग है, तो एक एक प्रदेश को वर्ग कहा था, समान अविभाग वाले प्रदेशों के समूह को वर्गणा कहा था, और फिर वो एक एक वर्गणा बढ़ती हुई उसमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जाते हैं, तो ये एक पूरे योग स्थान में जो गुणहानि वगैरह बताएंगे वो अलग बात है, वो तो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से गुणहानि अलग होगी, और यहाँ योग स्थानों की अपेक्षा ये गुणहानि शब्द हर एक जगह आएगा, ख्याल है ना, ये तो स्पर्धक वर्गणा में भी वो गुणहानि की बात आएगी, उसकी बात अभी नहीं हो रही है। अभी त्रस पर्याप्त जीवों की जो 32 योग स्थान हमने मान लिए हैं उसकी बात चल रही है, उसमें भी ये गुणहानि वगैरह शब्द वही आएंगे, शब्द तो वही आने वाले हैं क्योंकि वो गणित की पद्धति है। यानी ये जो कॉमन शब्द है ना कि गुणहानि कहना है या निषेक, अभी इसको एक एक योग स्थान को एक एक निषेक भी कहेंगे। अभी यहाँ स्पर्धक परगणा की बात अभी यहाँ नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो गुणहानि का काल निकाला हमने, अभी उसका विरलन करना, यानी हमने अपने गणित में 4 आए तो उसका विरलन करेंगे तो 4 आ जाएंगे। इसका विरलन कर प्रत्येक एक पर जघन्य योग स्थान के जीवों को समखंड करके देने पर, यानी हमने जो 16 मान लिया है 16 को 4 में विभाजित करेंगे तो हर एक के ऊपर 4-4 आ जाएंगे। समखंड करके दिया, प्रत्येक एक के प्रति जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। इसको कहते हैं जीव प्रक्षेप, 4 है वो प्रक्षेप हुआ। हमने जघन्य योग स्थान में हमने जीवों की संख्या 16 मानी है तो उसमें 4 का प्रक्षेप करेंगे, एक बार करेंगे प्रक्षेप 20 आए, फिर दो बार करेंगे 24 आए, तीसरी बार करेंगे 28 आए, चौथी बार करेंगे तो 32 आ गए। इतना होने के बाद फिर वो प्रक्षेप का प्रमाण बदलेगा। पहले में प्रक्षेप कितना है उसको बताया उन्होंने, अब इसी की वो चर्चा की थी। ये इतना प्रक्षेप प्राप्त हुआ और ये जो देखो यहाँ इसको पढ़ेंगे, ये उदाहरण में यही बताया है, इसको हमने कल पढ़ा था। ये जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ जो अभी हमने देखा, उसके नीचे फिर पढ़ते। अब यहाँ जीव प्रक्षेप के प्रमाण का विचार करते हैं, वह इस प्रकार। यव मध्य से पहले की नाना गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि, पहले की यानी नीचे की अभी हम कहेंगे, तो अपने उदाहरण में 3 लिखे था तो उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 आएगी, क्योंकि 3 बार 2 से आपस में गुणा करना है। उस राशि से 3 गुणहानियों को गुणित करने पर, 3 गुणहानि ने एक गुणहानि 4 की है, 3 गुणहानि 12 की हो जाएगी, उसको गुणित करके योग स्थान के काल से असंख्यात गुणा प्राप्त होता है। ये जो हमने योग स्थान जो है वो पूरा योग स्थान 32 माने थे और ये अभी 96 आ गए, वो उसके असंख्यात गुणा हो जाता है। फिर उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर, त्रस पर्याप्त राशि अपने 1422 मान ली है, उसमें भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योग स्थान के जीव आते हैं जो हमने 16 मान लिए थे। उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। देखो ये क्या कहा भी, असंख्यात जगत श्रेणी कहा ना, तो इस असंख्यात का माप क्या है? हाँ, तो जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग है, ये बात यहाँ बता। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जो जघन्य योग स्थान आए जीव, जघन्य योग स्थान के जीव, तो श्रेणी की विष्कम्भ सूची का अर्थ होता है जिस असंख्यात से जगत श्रेणी को गुणा किया है उसका माप क्या है, तो जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग है। इतनी बात ख्याल में आई ना? अब यही उदाहरण उन्होंने फिर नीचे बताया है, तो उसकी संख्या अपनी गणित में 16 आती है। अभी उसके लिए उन्होंने जो कारण मीमांसा देखी कि ये कैसे जाना, शंका समाधान फिर पढ़ते हैं, ये कैसे जाना, तो कहते हैं क्योंकि योग स्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्तभूत जो जगत श्रेणी का भागहार है वह जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग पाया जाता है। अभी जो हमने देखे ना असंख्यात का प्रमाण क्या है, जगत श्रेणी का असंख्यात वा भाग है। यानी वो 32 जो 32 लाने के लिए जो भागहार है वो कितना है, ऐसा उनको समझाना है। इसमें वो दिया नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट योगस्थान का काल ही निकाल के बताया। अपने को 32 मान ही लिया हमने, योगस्थान का काल हमने 32 मान लिया है, जगत श्रेणी का भागहार है। नहीं, क्योंकि 16 ही असंख्या जगत श्रेणी हो जाती है, 16 की संख्या असंख्या जगत श्रेणी है। हाँ देखो, उसका नीचे का, फिर नीचे का प्रश्न वही है, वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है कि योगस्थान संबंधी जो भागहार है वो भी कैसे जाना। तो कहते हैं सब योगस्थानों को जघन्य योगस्थानों के स्थान के जघन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके, देखो एक एक योगस्थान जो जघन्य योगस्थान है उसमें भी अनेक स्पर्धक है ना, हमने देखी इतने नाना गुणहानी है, एक एक गुणहानी में इतने इतने स्पर्धक है, तो हम स्पर्धक के प्रमाण से अगर उसको सभी गुण योगस्थानों को नापेंगे, उसमें एक स्पर्धक की श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से, यानी ये क्या कहते हैं, एक एक योगस्थान में क्या है तो नाना गुणहानी है, एक एक गुणहानी में स्पर्धक है और एक एक स्पर्धक में वर्गणाएं हैं, तो ऐसे सभी योगस्थानों के वर्गणा निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो गुणित करने पर श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती है, यानी सभी वर्गणाएं अभी निकाले तो भी श्रेणी का असंख्यात भाग है, तो योगस्थान भी श्रेणी के असंख्यात भाग ही आ जाएंगे। इस गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि योगस्थानों का काल लाने के लिए जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण आता है, यानी योगस्थान कितने हैं तो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है, वो असंख्यात का प्रमाण कितना है तो वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है, क्योंकि देखिए उसके लिए उन्होंने कारण क्या दिया कि एक एक योगस्थान में नाना गुणहानी है, एक एक गुणहानी में स्पर्धक है असंख्यात और एक एक स्पर्धक में असंख्यात वर्गणा है, तो एक योगस्थान में इतनी वर्गणा असंख्यात है ना, तो सभी योगस्थान में कितनी है तो वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात भाग आती है, तो योगस्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग आ ही जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। यहां पढ़ते अभी हम सब योगस्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते, ये सभी योगस्थानों की वर्गणा कैसे लाना उसको बताएंगे, वह इस प्रकार है। एक कम योगस्थान के काल को समस्त योगस्थान के काल से गुणित करके आधा कर, फिर अंगुल के असंख्यात भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके उसमें योगस्थान के काल से गुणित जघन्य योगस्थान की जघन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योगस्थानों की जघन्य स्पर्धक शलाकाएं होती है। देखो एक योगस्थान जघन्य योगस्थान अगर हमको देखना है तो एक जघन्य योगस्थान में हमने देखा था मिनिमम योग वाले कुछ प्रदेश है, उससे कम प्रदेशों में थोड़ा विभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, इसको वर्गणा हमने कही थी, ऐसे असंख्यात वर्गणाएं जाने पर वो एक स्पर्धक होगा, तभी अविभाग प्रतिच्छेद दुगुना होगा, तीन गुना चार गुना ऐसे अनेक स्पर्धक असंख्यात स्पर्धक जाने पर एक गुणहानि होगी, प्रदेशों की संख्या आधी हो जाएगी, ऐसे अनेक नाना गुणहानि है, यानी एक जघन्य योगस्थान में इतना सारा माल है, तो जघन्य योगस्थान का जो पहला स्पर्धक है उसको जघन्य स्पर्धक कहते हैं। हाँ वर्गणा, आणि एक एक वर्ग असंख्यात वर्ग, बरोबर आहे. उस असंख्यात का प्रमाण अलग अलग है, हम अभी वो उस डिटेल प्रमाण में नहीं जाएंगे, असंख्यात इतना कहेंगे अपने समझने के लिए. बड़ी बड़ी संख्या बार बार लेने से कन्फ्यूजन होगा. हमें तो इतना ही समझना है ना कि एक योग स्थान में क्या क्या है. तो योग स्थानों को आप गुणहानी में कहेंगे तो इतनी गुणहानियां कहेंगे, अगर उसी को स्पर्धकों में कहने के नाना गुणहानी मल्टीप्लाइड बाय एक एक गुणहानी के स्पर्धक, ऐसे भी कह सकते हैं उसको. हाँ, एक योग स्थान के भीतर बता रहे. तो एक योग स्थान के भीतर इतने स्पर्धक है और एक योग स्थान में इतनी वर्गणाएं है, तो टोटल योग स्थानों में कितनी वर्गणाएं होगी, ऐसा निकालना. परंतु उसमें प्रॉब्लम क्या है सब टोटल निकालने के लिए, ऐसा नहीं है कि आगे आगे जो है तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं. जघन्य स्पर्धक यहाँ पर है, यहाँ पर जघन्य स्पर्धक में कुछ वृद्धि हो जाएगी अविभाग प्रतिच्छेद की, तभी तो हमने उसको दूसरा योग स्थान कहा. तीसरे योग स्थान में और वृद्धि होती है, चौथे में और वृद्धि होती है. ये सबका गणित भले कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके निकालने के लिए उन्होंने ये सारा गणित यहाँ बतलाया. अब हम तो इतना ही समझेंगे कि इस प्रकार से हमें टोटल वर्गणा उसकी संख्या मिलेगी. ये पूरा पढ़ेंगे फिर वहां विशेषार्थ में और अपने फिगर्स लेके समझाएंगे. देखो हम ये पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ चौथे लाइन में आया है, पांचवी लाइन के अंत में. पुनः उनको पहले समस्त योग स्थानों की जघन्य स्पर्धक शलाकाएं ने स्पर्धकों की संख्या, शलाकाएं ने संख्या निकली, फिर उसको अभी वर्गणा में बदलना है. उसको श्रेणी के असंख्यात हुए भाग मात्र एक स्पर्धक की वर्गणा शलाकाओं से गुणित करने पर, एक एक स्पर्धक में श्रेणी से जगत श्रेणी के असंख्यात हुए भाग मात्र इतने, यानी असंख्यात वर्गणाएं हैं. हमने पहले क्या किया, एक योग स्थान में ये जघन्य स्पर्धक है, जघन्य स्पर्धक का माप लगाकर हमने सभी योग स्थानों में कितने स्पर्धक है उसको निकाला. अब एक स्पर्धक में इतनी असंख्यात वर्गणा सामान्य त्रैराशिक है, तो इतने टोटल स्पर्धकों में कितनी है गुणित करने पर समस्त वर्गणाएं आती है. ये सभी राशि श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, सभी योग स्थानों के सभी वर्गणाओं का प्रमाण निकाला, फिर भी वो श्रेणी का असंख्यात भाग है. उसका प्रमाण बढ़ते जाता है, फिर भी वो रहता श्रेणी का असंख्यात भाग ही. यहाँ योग स्थान का काल लेने के लिए श्रेणी का जो भागहार स्थापित किया जाए, श्रेणी का असंख्यात भाग कहा ना, तो वो असंख्यात का जो भागहार जो है, असंख्यात जो है, जिस असंख्यात से हम श्रेणी को भाग दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो भागहार जो है वह यदि अभी वो श्रेणी का जो भागहार है वो श्रेणी का असंख्यात वा भाग है ये सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए वो पहले यदि हम मानेंगे वो श्रेणी का प्रथम वर्गमूल होगा तो क्या होगा, यदि मानेंगे श्रेणी के वर्गमूल में और कुछ बढ़कर होगा तो क्या होगा, ऐसे ये पॉसिबिलिटीज अभी बताएंगे इसके आगे. तो कहते यदि यदि यानी अगर, यानी वो पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं, यदि श्रेणी जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण होवे तो योग स्थानों के काल का काल को वर्गित करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी. देखो हमें योग स्थानों की संख्या निकालनी है, विशिष्ट कोई एक संख्या है, और अभी जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से भाग दिया तो संख्या क्या आ जाएगी, प्रथम वर्गमूल इतनी संख्या आएगी और इसका वर्ग करने पर जगत श्रेणी आना चाहिए, क्योंकि ये योग स्थानों की संख्या निकलेगी. इफ वी थिंक ये जो भागहार है वो इसका प्रथम वर्गमूल है, ऐसा अगर मानेंगे तो आने वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो जगत श्रेणी होनी चाहिए, बराबर है ना।
हाँ,
जगत श्रेणी उत्पन्न होगी अथवा हाँ, अथवा यदि वह भागार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना होवे तो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, अब हम थोड़ा एक संख्या लेके देखेंगे यहाँ। पनट्टी को लेंगे 65,536, उसको यदि हम प्रथम वर्गमूल ने 256 से भाग देंगे तो क्या होगा, 256 आएंगे और उसका वर्ग करने पर पनट्टी यानी जगत श्रेणी आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, यदि हम इसको दुगुना करेंगे तो क्या होगा, यानी 256 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ना यहाँ पर भी, तो 256 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसका यदि ये समझ में आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये तो ये इसको हमने भाग दिया ना वर्गमूल से और फिर नीचे दो रखा है अभी गुणाकार वाला, वो नीचे ही रहेगा, तो उसको कहते हैं यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना होवे तो योगस्थान के काल को वर्गित कर। अभी पनट्टी आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करके, इसका वर्ग करेंगे तो पनट्टी डिवाइडेड बाय 4 आएगा, तो वर्गित करके 4 से गुणा करेंगे तो पनट्टी आनी आएगी, तो इसको वर्गित कर 4 से गुणा करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी, बराबर। ये तो पॉसिबिलिटीज अलग अलग बता रहे। अथवा यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से चौगुना होवे तो। अभी यहाँ मान लेते हैं हम इसको चौगुना किया, यहीं पर चौगुना किया तो यहाँ भी 4 आ जाएंगे और इसका वर्ग करेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा, तो 16 से गुणा करने पर फिर श्रेणी आएगी। काल को वर्गित करके 16 से गुणित कर पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी। इस प्रकार संशय के दूर होने तक संख्यात गुणे व असंख्यात गुणे तक ले जाना चाहिए। अभी इसको संख्यात गुणा करते करते असंख्यात गुणा किया और यहाँ असंख्यात हुआ तो भी वो असंख्यात के वर्ग से वहां गुणा करना पड़ेगा, असंख्यात के वर्ग से गुणा करने पर जगत श्रेणी आएगी। तो विशेष इतना है कि यहाँ योगस्थानों के काल को वर्गित कर श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर भी जगत श्रेणी उत्पन्न नहीं हुई, किंतु उसका असंख्यातवा भाग ही उत्पन्न हुआ। यानी जगत श्रेणी उत्पन्न होती नहीं, उसका असंख्यातवा भाग ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। इससे जाना जाता है कि जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता हुआ भी वह जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर जितना लब्ध आवे उतना है। यानी ये जो हमने देखा ना यहाँ पर, ये प्रथम वर्गमूल को कौन से असंख्यात से गुणा करना है, प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यातवा भाग, वो वाला जो कुछ है देखो, प्रथम वर्गमूल को जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर, ये पनट्टी का असंख्यातवा भाग लिया उन्होंने, जो कुछ है यथा योग्य उतना गुणित करने पर जो संख्या आएगी उतना ये भागहार है। भागहार की बात चल रही है इसकी, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को किसी संख्या से गुणित कर, क्योंकि हमने देखा 2 से गुणित करेंगे, 4 से गुणित करेंगे, 8 से गुणित करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या आएगी इसका वर्ग करने पर वो भी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग इतना ही आता है। हाँ, ये उसकी दलील है, प्रूफ है। भागहार क्यों इतना छोटा या बड़ा है उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये पॉसिबिलिटीज पहले बताई है। तीसरी लाइन, जघन्य योग स्थान के जीव भागहार को एक गुणहानि से गुणित करने पर योगस्थान काल का वर्ग पल्योपम के असंख्यातवे भाग से गुणित होकर चूंकि उत्पन्न होता है, अतः इसका त्रस जीव राशि में भाग देने पर श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र जगत श्रेणिया जीव प्रक्षेप प्रमाण उत्पन्न होती है, सिद्ध है। इस प्रकार जीव प्रक्षेप प्ररूपणा की प्रमाण की प्ररूपणा की जो हमने चार निकाला था उसके संदर्भ में ये सारी चर्चा है। ये भागार इतना ही क्यों है, उसकी विशिष्ट भागार क्यों है, उसकी चर्चा की है। अब जो हमने देखा था ना, अनंत यानी श्रेणी की बात चल रही है, प्रक्षेप कितना कितना बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है, उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स बताएंगे। अब अनंत रोपनिधा के आधार से अवस्थित भागार, अब इसमें अलग अलग पद्धति से ये भागार बताएंगे। ये जो प्रक्षेप जो हमने निकाला ना, आगे आगे की संख्या निकालनी है तो उसके जैसे हमने 16 को गुणहानि से भाग दिया और चार प्रक्षेप निकाला आगे आगे वैसे देखा था, इस तरह से अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो ये अनंत रूपनिधाय ने अगली अगली जो अगले अगले योगस्थान में कितना कितना बढ़ाना या जीव मध्य के बाद कितना घटाना, इसका जो प्रमाण है उसके लिए उसका प्रमाण कैसे निकालना, उसके लिए जो भागहार की संख्या है वो भागहार अलग अलग पद्धति से बताएंगे। उसमें कहते हैं अवस्थित भागहार यानी फिक्स भागहार, जो हमने चार 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 प्रक्षेप किया फिर आगे आठ आठ होगा वो फिक्स जो है उसको कहेंगे अवस्थित भागहार। रूपाधिक भागहार, एक एक से बढ़ता हुआ भागहार। रूपोन भागहार, एक एक संख्या से कम होता हुआ भागहार। और छेद भागहार यानी भागहार का भी छेद कर करके किस तरह से आगे होता है उसकी बात करेंगे, अभी समझाएंगे। इन चार भागहारों द्वारा योग स्थानों के जीवों को उत्पन्न कराना चाहिए, यानी आगे आगे के योग स्थानों में कितने जीव है उसकी संख्या निकालना चाहिए। हमें तो मालूम है कि जघन्य में 16 है, फिर 24 हो गए, 20 हो गए, 24 हो गए, 28 हो गए, 32 हो गए, फिर 8-8 से बढ़ेंगे, ये हमने पहले जान लिया है। अब इसी को अलग अलग पद्धति से समझाएंगे। अनंतर और परंपरा यानी गुणहानि टू गुणहानि डायरेक्ट निकालेंगे, और अनंतर यानी एक एक निषेक एक एक योग स्थानों की संख्या निकालेंगे। अनंतर यानी इमीडिएट नेक्स्ट, यानी वो डायरेक्ट 16 के 32 हो जाते हैं, 32 से 64 होते हैं, वो परंपरा उपनिधा में बताएंगे। अब इसमें तो 16 से 20 होते हैं, ये अनंत उपनिधा। आज थोड़ा थोड़ा अर्थ ख्याल में आ रहा है ना? कल तो एकदम बहुत सा। तीसरी लाइन, यथा वहां प्रथमतः अवस्थित भागहार के आधार से योग स्थानों के जीवों की उत्पत्ति का कथन करने पर जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण एक गुणहानि का विरलन कर, अभी गुणहानि अपनी चार है उसका विरलन कर जघन्य योग स्थानों के जीवों को समभाग करके देने पर, जघन्य योग स्थान हमने 16 मान लिए उसको समभाग करके देंगे तो चार 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 हो जाएंगे, प्रत्येक विरलन के प्रति एक एक जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। विरलन चार हुआ और प्रत्येक के प्रति चार चार है तो चार बार प्रक्षेप होगा, अभी तो 16 में चार बार बढ़ोतरी होगी, 16 का 20 होगा, एक प्रक्षेप हुआ, फिर दूसरा प्रक्षेप डालेंगे तो 24 हो गए, तीसरे प्रक्षेप में 28, चौथे प्रक्षेप में 32, फिर उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर जघन्य योग स्थान के जीवों को प्रतिराशि कर, प्रतिराशि यानी उसको अभी हम बेस रखेंगे 16, और एक प्रक्षेप को लिया, चार को लिया और उस प्रतिराशि में मिला दिया, प्रक्षेप का ही अर्थ होता है एडिशन, उसमें प्रक्षिप्त करने पर इन्हें डालने पर द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। एक एक योग स्थान के जीवों को निकालना है संख्या, तो दूसरे योग स्थान में 16 में चार मिला दिए तो 20 हो जाएगी। फिर इसको प्रतिराशि करके अब 20 को प्रतिराशि करना है और उसमें और एक प्रक्षेप करना मिलाना है। इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलाने पर ये हमने चार किए ना, हमने ये चार प्रक्षेप निकाले हैं और हर एक प्रक्षेप की वैल्यू चार चार है। हमने प्रतिराशि 16 को बनाया है, उसमें ये प्रक्षेप मिलाया 20 हो गए। अब 20 को प्रतिराशि करेंगे, दूसरा प्रक्षेप मिलाएंगे, इस तरह से तीसरा प्रक्षेप मिलाएंगे, चौथा मिलाएंगे, तो उस राशि को प्रतिराशि यानी अभी उसको बेस बना के जिसमें ऐड करना है, जिसमें ऐड करना है वो प्रतिराशि। हम कहाँ आए प्रक्षेप, नीचे से चौथी लाइन। ऐसा प्रक्षिप्त करने पर द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। नीचे से तीसरी लाइन में आए, फिर इसको प्रतिराशि करके इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलाने पर यानी दूसरा प्रक्षेप चार का उसको मैं मिला देना, तृतीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। उसमें यानी हमने पहले 16 देखे, फिर 20 देखे, फिर अभी 24 हो गए। इस प्रकार विरलन राशि प्रमाण सब जीव प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए। हमने विरलन किया था ना चार बार, तो चारों ही प्रक्षेप मिला दिए तो 32 आ गए। उस समय दुगुनी वृद्धि होती है, 16 के 32 हो गए ना, चारों प्रक्षेप मिला दिए, क्योंकि जघन्य योग स्थान के जीवों के ऊपर उतने मात्र अंकों का ही प्रवेश देखा जाता है, क्योंकि हमने 16 को ही विरलन कर चार में बांटा था। अब वो यूज हुए ने 16 में 16 मिल गए ना, सभी प्रक्षेप यूज किए तो 16 दुनिया 32 हो जाएंगे। फिर दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को उसी विरलन पर समखंड करके देने पर, वही विरलन तो चार का ही रहेगा, अभी विरलन तो वही है और अभी इसमें समखंड किसके करने, 32 के, तो कितने हो गए, 8-8 हो जाएंगे। तो अभी 32 को प्रतिराशि करके अभी एक एक प्रक्षेप 8-8 का मिलाएंगे, तो 32 और 8 40 हो गए, फिर 48 हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे और 64 हो जाएंगे, तो 32 भी दुगुने हो जाएंगे। देखो, फिर दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को उसी विरलन पर समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति दूसरे प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है, यानी दूसरे गुणहानी का जो प्रक्षेप है उसको प्राप्त होता है, प्रक्षेप का भी प्रमाण बदल गया। विशेष इतना है कि पूर्वोक्त प्रक्षेप से यह प्रक्षेप दुगुना है, क्योंकि जो राशि विभक्त करके विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति दी गई है वह दूनी है। पहले हमने 16 को 4 में विभाजित किया था, अब 32 को 4 में विभाजित कर रहे हैं, तो मूल राशि दुगुनी है तो प्रक्षेप भी दुगुना आ जाएगा। इस प्रक्षेप को दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को प्रतिराशि करके, दुगुनी प्राप्त हुई राशि यानी 32 को प्रतिराशि करके उसमें 8-8 मिलाते जाएंगे, उसके ऊपर देने पर उससे आगे के उपरिम योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। अपनी संख्या में अभी 5वें नंबर का जो है इसको प्रतिराशि करके इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलाने पर उसके आगे के उपरिम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। अब इस तरह से कहां तक ले जाना, वो यव मध्य तक ले जाना, क्योंकि ये प्रक्षेप समाप्त हो जाएंगे, फिर जो और इससे भी डबल जो संख्या आई उसको उसी विरलन पर देना है। विरलन अभी अपना फिक्स है, ऐसे हमने 128 तक हम ले जाएंगे उसको, यानी तीन गुना नहीं है ना इसमें। यव मध्य के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। विशेष इतना है कि जीव प्रक्षेप प्रथम गुणहानी से लेकर ऊपर सर्वत्र प्रत्येक गुणहानी के प्रति दुगुने दुगुने होते जाते हैं, ऐसे यहाँ कहना चाहिए। प्रक्षेप पहले चार था, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो जाएगा, क्योंकि प्रक्षेप का प्रमाण लाने के लिए जो भागहार का प्रमाण कहा है वह सर्वत्र अवस्थित अर्थात एक रूप है, और इसी कारण से गुणहानी के काल को भी अवस्थित रूप से जानना चाहिए। अब विशेषार्थ इसी को हाँ, योग स्थान फिक्स है ना, योग स्थानों की संख्या टोटल बताई है। अब कोई द्विइंद्रिय जीव है उनका कितना योग हो सकता, उसमें योग के जो वेरिएशन है उसको ही बताए ना। ये योगों का तो पलटना होता है, एक एक जीव में भी योगों का पलटना होता है। योग के नहीं, जम तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि द्विइंद्रिय के लिए कुछ योग स्थान जो फिक्स है उसमें उसके वेरिएशन होते रहेंगे। वो तो द्विइंद्रिय वाले को तीनिंद्रिय वाले तो नहीं होगे योग, उसके अपने अपने योग स्थानों की संख्या फिक्स है। अब विशेषार्थ है ना, इसी को अभी जो हमने डायरेक्ट अंकों को लेते लेते ही देखा था, अभी अंक संदृष्टि यहाँ अलग बताई है। अंक संदृष्टि की अपेक्षा उक्त विषय का खुलासा इस प्रकार है। गुणहानि का काल चार है, इसका एक 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 इस प्रकार विलरण करके उस ऊपर जघन्य योगस्थान के जीव 16 को विभक्त कर चार 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 इस क्रम से स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति चार प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रक्षेप का यही प्रमाण है। पहला जो प्रक्षेप है जो हम 16 में मिलाने वाले हैं वो चार चार का है। इसे 16 में मिलाने पर 20, यह दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इसमें चार के मिलाने पर 24, यह तीसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इस प्रकार जीवों की संख्या की दूनी वृद्धि होने तक यही क्रम जानना चाहिए, इन्हें 32 हो जाएगी तब तक यही क्रम है। फिर गुणहानि के काल का पूर्ववत विरलन करके उस पर अंत में प्राप्त 32 इस संख्या को विभक्त कर क्रम से स्थापित करना चाहिए। इससे द्वितीय प्रक्षेप का प्रमाण 8 उत्पन्न होता है। इस प्रकार यव मध्य के जीवों की संख्या 128 उत्पन्न होने तक यही क्रम जानना चाहिए। अतः यहाँ भागहार जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग अवस्थित रूप से सर्वत्र विवक्षित है। ये भागहार यहाँ फिक्स है, इसीलिए गुणहानि का काल भी अवस्थित रूप से ही लिया गया है, क्योंकि इन दोनों का परस्पर में संबंध है। हमने गुणहानि के काल से भागा था ना उसको। अब ये तो सेंटर तक आए, जीव यव मध्य तक आए, उसके ऊपर की बात अभी करेंगे। तो ऊपर यदि हम विरलन करेंगे, एक एक का ही विरलन करेंगे और 128 को उसमें देना है तो क्या होगा? अभी तो ऊपर कम करना है ना, 32 आएंगे तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ भागहार डबल करना पड़ेगा। यहाँ एक गुणहानि नहीं चलेगी, यहाँ दो गुणहानि चलेगी, यानी इसलिए अभी यहाँ 8 को विरलन करके, दो गुणहानि को विरलन करके 128 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16-16 आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा ना 128 के दोनों तरफ 16-16 का ही है ना, ऊपर की भी गुणहानि वहां भी 16 का डिफरेंस है, पहले वाला 4 का, इसलिए यहाँ भागार गुना हो जाता है। ये कल हमने पढ़ा था पर तभी उसका अर्थ नहीं समझा था। देखो अब यहाँ पढ़ते हैं। अब जीव यव मध्य के ऊपर के स्थान को कथन करने पर पूर्व भागार से दुगुने भागार का विरलन करना चाहिए। क्या चार है? गुणहानि चार है, इसीलिए अब यहाँ दो गुणहानि को विरलन करेंगे। नीचे के गुणहानि में हमने एक गुणहानि दे, आयाम तो चार ही है, अभी भी 5 गुणहानि है, आयाम तो चार ही है। हाँ, 20 नहीं नहीं 20 में समान डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं है, वहाँ गुणहानि ज्यादा ही है, ये नीचे हमने नीचे तो 16 तक संख्या आई थी, तो ऊपर 128 वाली संख्या है वो 64 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, और फिर उससे आधी 8 हो जाएगी और 4 हो जाएगी, 4 तक चले जाएंगे हम। इसलिए अभी यहाँ हमने नीचे अभी हम देखे हैं ना, अभी एक 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 निषेक एक एक योगस्थान में कितनी संख्या उसको हमको निकालना है। देखो अभी यहाँ से हम कैसे चढ़े, 64 के बाद क्या हुआ, यहाँ 16 का डिफरेंस था ना, प्रक्षेप 16 का था, 64 में जैसे यहाँ 112 लेंगे और बीच में 16 5 80 66 96 1896 112 128 आए थे, ऊपर भी यही है 128 के बाद 112 आना चाहिए। हाँ यहाँ 64 से हमने ऊपर से और स्टार्ट किया था, अभी यहाँ तो 8 ही करना है, 2 गुणहानि ही करना है क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर ले रहे हैं, सर्वत्र 2 गुणहानि ही करना है, हम घटाते जाएंगे ना, तो 2 गुणहानि को रखकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16 16 आएंगे। दूसरी पद्धति से अगर वो बताएंगे ना हमको, वो भागहार भी दूसरी पद्धति से बताएंगे, वहां तो 128 से शुरू करेंगे, 128 से शुरू करेंगे दोनों ओर बताएंगे, वो अलग पद्धति से बताएंगे, हमने नीचे से शुरू किया है तो मैक्सिमम आने पर अभी 2 गुणहानि वाला भागहार लेके उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही तो बता रहे हैं यहाँ पर। देखो ये इसको हम पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा, पहली लाइन से फिर पढ़ते हैं। देखो अब जीव यव मध्य के ऊपर के स्थान को कथन करने पर पूर्व भागहार से दुगुने भागहार का विरलन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना यव मध्य का प्रक्षेप नहीं बन सकता। अब यहाँ के आगे जो प्रक्षेप है उसमें से हम माइनस करते जाएंगे। दुगुने भागहार का विरलन करने से अवस्थित भागहार की प्रतिज्ञा का विरोध होगा, सो भी नहीं है। कोई कहेंगे आपने तो अवस्थित भागहार कहा था, अभी डबल हो रहा है। नहीं, भागहार तो उतना का उतना ही रहेंगे आगे के पांचों गुणहानियों में, 8 के 8 ही है। जैसे 64 को भी हमको डिवाइड करना है तो 4 में नहीं करेंगे, 64 को हम 8 में डिवाइड करेंगे, और 8 में डिवाइड करने के आगे का जो प्रक्षेप है वो 8 का आएगा। हम मैक्सिमम से कम की ओर जा रहे हैं ना यहाँ पर। दुगुणे भागहार का विरलन सो भी नहीं है, क्योंकि यव मध्य के अधस्तन और ऊपरी भागों में पृथक पृथक अवस्थित रूप से 2 भागहार स्वीकार किए गए हैं। हाँ स्वीकार किया है, परंतु वो फिक्स है, नीचे का भागहार भी फिक्स है अवस्थित है और ऊपर का भी फिक्स है। हाँ दोनों का डिफरेंट है, हाँ रिलेटेड नहीं। इस प्रकार इन दूने भागहार का विरलन कर समखंड करके, अभी दूना भागहार ने 8 आया अपना, तो 8 में अभी 128 का समखंड करना है, तो हर एक के प्रति कितने 16 16 आएंगे, 16 8 28। जीव यव मध्य के देने पर, जीव यव मध्य ने 128 की संख्या देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर यव मध्य को प्रति राशि कर, अभी 128 को मूल राशि बना के उसमें से एक प्रक्षेप के कम करने पर उसके आगे के योगस्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। हमें एक एक आगे के योगस्थान का जीव निकालना है ना, तो 128 में से हमने 16 कम कर दिए, उसको प्रति राशि कर उसमें से द्वितीय प्रक्षेप के कम करने पर उससे उपरीम योगस्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट योगस्थान के जीवों का प्रमाण आने तक ले जाना चाहिए। उत्कृष्ट जीव स्थान अंतिम वाला जो है वहां तक ले जाएंगे हम। अब इसी का विशेषार्थ बताते हैं। पहले जो क्रम बतलाए हैं उससे जीव यव मध्य के आगे का क्रम बदल जाता है। यहाँ भागार का प्रमाण पूर्व की अपेक्षा दूना हो जाता है। जीव योग मध्य के पहले प्रत्येक योग स्थान के जीवों का प्रमाण लाने के लिए भागार का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाए थे, परंतु यहाँ वह दूना हो जाता है। अन्यथा योग मध्य के जीवों के आधार से आगे के प्रक्षेप का प्रमाण नहीं लाया जा सकता। इस पर यह शंका होती है कि जब सर्वत्र अवस्थित भागार स्वीकार किया गया है, तब फिर यहाँ उसे दूना कैसे किया जा सकता है। इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यव मध्य से पूर्व की गुणहानियों में, यानी नीचे की, अभी हमारी गणित में सर्वत्र एक भागार स्वीकार किया गया है और आगे की गुणहानियों में दूसरा भागार स्वीकार किया गया है, इसलिए भागार को अवस्थित मानने में कोई बाधा नहीं है। नीचे के लिए भागार अलग है और ऊपर के लिए वो दुगुना भागार है। फिर भी यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि यव मध्य में सबसे अधिक जीव होते हैं, इसलिए यव मध्य के आगे की गुणहानियों में सर्वत्र प्रक्षेप को घटाते जाना चाहिए। 128 में हमें वो कहा, नाम तो उसका प्रक्षेप है परंतु उसको माइनस करते जाएंगे हम, और प्रत्येक गुणहानि में उसे आधा आधा करते जाना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण आने तक यह क्रम जानना चाहिए। योग स्थान उत्कृष्ट है परंतु उसमें जीवों की संख्या मिनिमम होगी, हम घटाते जा रहे हैं ना, हर बार ऊपर की गुणहानियों में वो घटते चला जाएगा। देखो यहाँ हमने 8 में तो डिवाइड किया है, तो उसमें प्रक्षेप में हर एक के ऊपर 16-16 आएंगे, परंतु इसमें तो 4 ही यूज करेंगे प्रक्षेप हम आधे, क्योंकि 4 की ही गुणहानी है। 8 बार आए इसलिए 8ों को ही माइनस करते जाना, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपने वो उसके पूछा था। अब दूसरी पद्धति से बताते, अथवा दो गुणहानियों का विरलन कर, दो गुणहानियां ने 8, पहले पद्धति में बताया कि भागार दुगुना कर दो, अब यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं कि दो गुणहानियों को विरलन कर यव मध्य को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति यव मध्य जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। यव मध्य के आगे अभी प्रक्षेप का प्रमाण कितना है जिसको हम माइनस करना है, तो दो गुणहानि को विरलन करेंगे 8 आएंगे, और यव मध्य 128 उस पर हम समखंड करके देंगे तो 16-16 आ जाएगा। फिर यव मध्य को प्रतिराशि करके पार्श्व में स्थित दो योग स्थानों के जीवों की अपेक्षा, अब ये दूसरा भागा दूसरी पद्धति बता रही है, स्टार्टिंग पॉइंट 128 को ही ले रहे हैं, और फिर यहां दो गुणहानियों को विरलन किया तो 8 आए और हर एक के प्रति 16-16 आ गए। अब ये दोनों ओर दे देना, इसमें से 4 इधर और 4 इधर, ये दूसरी पद्धति, ऊपर और नीचे दे देना, यानी यहाँ भी ऐसे क्रम से 64 तक आ जाएगी और यहाँ भी क्रम से 64 तक आ जाएंगे। हाँ, तो यही बात यहाँ बता रहे। देखो फिर पढ़ती हूँ, दो गुणहानियों को विरलन कर यव मध्य को समखंड कर देने पर, यानी कितने आए यव मध्य को, 16-16 आ गए ना, 8 में विभाजित किया उसको, प्रत्येक एक के प्रति यव मध्य जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है, तो प्रक्षेप का प्रमाण है 16। फिर यव मध्य को प्रतिराशि करके, 128 को प्रतिराशि करके बेस बनाकर पार्श्व में स्थित, पार्श्व ने साइड्स, 128 के दोनों साइड्स, दोनों ओर स्थित दो योग स्थानों के जीवों की अपेक्षा दो यव मध्यों में से विरलना के प्रथम प्रक्षेप को कम करने पर यव मध्य के दोनों पार्श्व भागों में स्थित प्रथम योग स्थानों के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी 128 में से यहाँ भी 16 कम करो 112 और यहाँ भी 16 कम करो 112, दोनों ओर के योग स्थानों का प्रमाण मिल गया, बीच में 128 है, दोनों की ओर 112-112 आ जाएगा। फिर उन दोनों को ही प्रतिराशि करके उभय राशियों में से यानी दोनों ही राशियों में से द्वितीय प्रक्षेप को कम करने पर और कम करना 112 में से यव मध्य के दोनों पार्श्वों में स्थित द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। ये पहला वाला 112 आया, इसमें से और कम करो तो 96 और दोनों ओर ऐसे दोनों ओर एक साथ कम करते जाना। नीचे से ऊपर तक हमने देखा वो एक सिस्टम हुई। अब यहाँ हाँ ऐसे ही अलग अलग चार सिस्टम बताएंगे, फिर वो रूपाधिक रूपो न और कुछ कुछ है वो भी बताएंगे। हाँ पर पहले हमने जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक देखा, अभी सेंटर से लेकर दोनों ओर टेपरिंग करेंगे तो नीचे की गुणानी जल्दी खत्म होंगे परंतु ऊपर और कम करते चले जाएंगे। हाँ, देखो इस प्रकार विरलन राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने तक ले जाना चाहिए। विरलन राशि 8 है, उसका अर्ध भाग यानी 4 बार ही ऐसा करना है, पूरी विरलन राशि को नहीं यूज करना क्योंकि हमारी एक गुणहानि हो जाती है, आधा हो जाएगा। 128 के 64 दोनों ओर हो गए, यहाँ तक ही हमको इसको लेना है। ये सभी 8 संख्याओं को नहीं माइनस करना है, यानी 4 बार 16 हम माइनस करते जाएंगे। तत्पश्चात विरलन राशि के शेष अंकों पर स्थित राशि को आधा करके, अब यहाँ कितने, यहाँ 16 राशि थी, ये पद्धति अलग अलग बता रहे हैं, रिलेशन कुछ नहीं बदलने वाला। देखो ये 16 राशि हमने दोनों ओर की यूज कर दी, अब ये 16 को 8 करेंगे हम, आधी आधी करेंगे ना, तो आधा करके अनाहेय अंकों को परिपाटी से देने पर, परिपाटी यानी उसी पद्धति से दोनों ओर देना है हमको। यव मध्य की अपेक्षा द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप होता है, अभी ये सेंटर से लेंगे, यव मध्य की अपेक्षा दूसरी गुणहानि, दोनों ओर की दूसरी गुणहानि, ये पहली गुणहानि यहाँ पर यव मध्य को दोनों ओर लिया हमने और फिर दूसरी गुणहानि का प्रक्षेप जो होगा 8 आएगा। आधा करके अनाहेय अंकों को परिपाटी से देने पर, अनाहेय का एक्चुअल मुझे भी अर्थ ख्याल में नहीं आया परंतु थोड़ा संदर्भ लेके, शेष रूवरिधम अध्य अनाहेय रूवाणम परिवाड़ीये दिन्ने बाजू की। अनाहेय जो आ गई ना राशि, अनाहेय अंकों को परिपाटी से देने पर आधा करके जो आई राशि आई है प्राप्त राशि को, उसका कुछ अपने में मीनिंग फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए ऐसे ही पढ़ लेना उसको। तो द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप क्योंकि यह पूर्वोक्त प्रक्षेप से आधा है, फिर इन प्रक्षेपों को पहले के समान दूसरी गुणहानि के अंतिम निषेक के प्राप्त होने तक घटाते हुए ले जाना चाहिए, यानी वो 32 होने तक उसको हम ले जाएंगे। इस प्रकार जानकर दोनों ही पार्श्व भागों में जघन्य योग स्थान के जीवों को प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, यानी दोनों ओर हम 16 तक ले जाएंगे, परंतु अभी ऊपर उत्कृष्ट योग स्थान तक ज्यादा है ना गुणहानियां, हाँ उसके अभी बताएंगे। फिर नीचे नहीं ले जाया जा सकता, ये ख्याल में आता है क्योंकि जघन्य तक आ गए तो अभी वो तो एक बाजू तो समाप्त हो गए, अब दूसरी ओर वो घटाते जाएंगे, जीवों की संख्या ऊपर ही ऊपर निकालेंगे अभी, क्योंकि उससे आगे द्विंद्रिय पर्याप्त के योग स्थान नहीं पाए जाते, क्योंकि हमने शुरू ही किया था द्विंद्रिय पर्याप्त के जघन्य योग स्थान से लेकर शुरू किया था, किंतु ऊपर यानी उत्कृष्ट की तरफ पूर्व के समान अधस्तन गुणहानियों के असंख्यात भाग मात्र असंख्यात गुणहानियों को उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, यानी बची हुई कितनी है, दोनों ओर समान ले गए, अभी और कितनी ज्यादा रही है, वो भी असंख्यात है। अभी अपनी अपनी इसमें दो गुनहानी बाकी है, एक्चुअल में कितनी है, असंख्यात गुनहानी, वो कितनी असंख्यात है, तो नीचे की ओर जितनी असंख्यात है उसका भी असंख्यात प्रभाव, यानी कितनी असंख्यात गुनहानियां होगी ना, अभी लिखा ना अधस्तन गुनहानियों के असंख्यात भाग। अधस्तन गुनहानी हमने तीन मानी है और उसका असंख्यात प्रभाव और दो ऊपर हमने बताई, वो तो समझने के लिए कोई भी काल्पनिक कर ली है, परंतु नीचे की ओर जितनी गुनहानियां थे उसके भी असंख्यात विभाग इतनी एक्स्ट्रा है ऊपर की ओर गुनहानियां। हाँ, इस प्रकार करने पर यव मध्य के दोनों ही पार्श्व भागों में एक अवस्थित भागार सिद्ध होता है। यह अवस्थित भागार कहने की दूसरी पद्धति है। पहली पद्धति में तो यव मध्य के बाद दुगुना करना पड़ेगा, पड़ा था भागार, डबल किया था हमने। अब यहाँ एक ही भागार रखते हुए उसको दोनों ओर दो गुनहानी वाला ही भागार रखा था और उसको दोनों ओर कैसे कम करना उसको हमने देखा था। हाँ, योग ज्यादा है, जीवों की संख्या कम है। हाँ, ऐसा ही है, पंचेंद्रिय उत्कृष्ट तो संगी पंचेंद्रिय को ही होगा, वो इन बिटवीन कोई एक योग स्थान है, एकदम ऊपर के संगी पंचेंद्रिय। हाँ, ऐसे क्रम से होते जाएंगे, कोई कोई तो ओवरलैप भी होगे ना, ऐसे कितने। हाँ, अभी क्योंकि उनके ओवरलैपिंग भी होगे ना, पंचेंद्रियों का भी जघन्य योग स्थान या द्विंद्रिय का उत्कृष्ट योग स्थान, उसकी चर्चा उन्होंने की नहीं है, उन्होंने तो केवल एक कोई पर्टिकुलर योग स्थान लिया है, वहां जीवों की मैक्सिमम संख्या बताई है। अब इसी का विशेषार्थ, वहां कितने जीव पाए जाते हैं वो बात है, एक एक जीव,
योग की कैपेसिटी नहीं बताया,
एक योग स्थान में योग की कैपेसिटी है और उसमें कितने जीव पाए जाते हैं उसकी बात है, पर्याप्त जीव। हाँ, एट एनी गिवन टाइम वहाँ ही ज्यादा मैक्सिमम जीव होंगे। जीवों की संख्या, ये तो असंख्यात में है ना सारी। हाँ, किसी के बढ़ेगा तो किसी का कम होगा, तो उसमें तो जीवों की संख्या उतनी ही रहेगी। हम देखते हैं ना, चारों गतियों की जीवों की संख्या हमने इतनी थी, तो जीव तो मरकर अन्य अन्य गति में जाते हैं, अभी वही फॉर्मूला वहां लगाना, तो वो अन्य गति में गए परंतु अन्य गति से वहां भी आए ना कुछ चीजें। विशेषार्थ इसका ही, पहले यव मध्य से पूर्व की गुणहानियों में प्रारंभ से प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या में प्रक्षेप को जोड़ते हुए यव मध्य तक के जीवों की संख्या उत्पन्न करके बतलाई गई थी। स्टार्टिंग में जो हमने पहली मेथड देखी थी उसमें जघन्य योग स्थान 16 से शुरू करके उसमें जीवों की संख्या, उसमें प्रक्षेप को बढ़ाते बढ़ाते यव मध्य तक आए थे, और यव मध्य से आगे सर्वत्र प्रक्षेप को घटाने की प्रक्रिया के निर्देश द्वारा उत्कृष्ट योग स्थान तक के जीवों की संख्या निकालकर बतलाई गई थी, और बाद में उसमें से घटाते घटाते बताया था। किंतु यहाँ यव मध्य से दोनों ओर प्रक्षेप को घटाते हुए किस प्रकार प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या आती है, इस विधि का निर्देश किया गया है। यहाँ 128 को ही शुरू करके दोनों ओर हमने घटाते हुए देखा। प्रारंभ में यहाँ दो गुणहानियों के काल का विरलन कराकर यव मध्य के जीवों को समविभक्त कर दिया गया है। दो गुणहानी ने 8, उसमें 128 को हमने समान रूप से डिवाइड किया तो समविभक्त किया, तो हर एक के ऊपर 16 16 है, और एक विरोधन के प्रति जितनी संख्या प्राप्त हो उतनी संख्या दोनों ओर क्रमशः घटाई गई है, किंतु यह क्रम आधे विरलनों को समाप्त होने तक ही चालू रखा है, क्योंकि चार बार ही घटाना है। आगे प्रत्येक गुणहानि में प्रक्षेप का प्रमाण आधा आधा होता गया है, और इस प्रकार दोनों ओर गुणहानि के अनुसार प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या लाई गई है। यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें भागहार का प्रमाण नहीं बदलता है। फिक्स भागहार रखने के लिए ये दूसरी मेथड बताई उन्होंने। अब ये तो अवस्थित भागहार के दो मेथड्स बताए। अब ये रूपाधिक भागहार, पहले रूपाधिक किया था उन्होंने, उसको रूपाधिक करना चाहिए। मैंने पढ़ा तभी मुझे जरा ख्याल आया था, परंतु मैंने कुछ बोला नहीं था। पेज नंबर 66 पर दूसरे पैराग्राफ में पहली लाइन जो है ना, अवस्थित भागहार और रूपाधिक भागहार। रूप यानी एक संख्या को रूप कहते हैं, और उसमें ऐड करना रूप अधिक। अभी हमारा भागहार कितना था? चार था। अभी चार में एक एक मिलाते जाएंगे। अश्विन सोच रहे वो कैसे, उसी को तो पढ़ना है ना। अब रूपाधिक भागहार के आधार से, अब यहाँ भागहार हर समय चेंज होता जाएगा, क्योंकि एक एक योग स्थान के लिए हम अलग अलग भागहार निकालेंगे, वो भागहार एक एक से बढ़ता जाएगा। रूपाधिक भागहार के आधार से अनंतर उपनिधा का, यानी अनंतर यानी नेक्स्ट, एक एक योग स्थान को निकालते जा रहे हैं हमने, इसको कहते हैं अनंतर उपनिधा। अनंतर उपनिधा का कथन करते हैं। गुणहानि के काल का जघन्य योग स्थान के जीवों में भाग देने पर प्रक्षेप प्राप्त होता है। अपना कितना आएगा अपनी संख्या में? अपने उदाहरण में 16 को हमने 4 का भाग दिया गुणहानि का, तो प्रक्षेप का प्रमाण 4 आया। उसे प्रतिराशि रूप से स्थित जघन्य योग स्थान के जीवों में मिलाने पर द्वितीय स्थान के जीव होते हैं, वो कितने आए? 20 आ गए। 4 प्रक्षेप आया, 16 में मिला दिया, तो संख्या 20 आएगी। अब भागहार एक से बढ़ा देना, 20 को 5 से भाग दिया और वो 20 में मिला देना, 4 ही आते हैं ना भाग, वो संख्या तो 4 ही आएगी। तो 20 में मिला देना 4, तो 24 आएंगे। फिर भागहार और एक बढ़ा देना, अभी 24 को 6 से भाग देना, 4। देखो अलग अलग मेथड है ना, कि भागहार बढ़ाते गए, जो संख्या है उसको एक अधिक से भाग देते जाएंगे। तो यही बताते, देखो पुनः चौथी लाइन, एक अधिक पूर्व भागहार से द्वितीय स्थान के जीवों को भाजित कर। पूर्व भागहार 4 था, एक अधिक यानी 5 भागहार हुआ, और पूर्व भागहार ये जो संख्या थी 20 उसको भाग दिया। उनमें एक खंड को यानी 4 खंड को उसी दूसरे स्थान की राशि को ही दूसरी राशि बनाकर उसमें मिला देने पर तृतीय स्थान के जीवों का प्रमाण होता है, ये 24 आ गया। फिर एक अधिक अनंतर अधस्तन भागहार, नीचे वाला भागहार कौन सा था? 5 था, उसमें और एक मिला देना। इस दूसरे स्थान की राशि को खंडित कर जो प्राप्त हो उसे प्रतिराशि रूप से स्थापित तीसरे स्थान के जीवों में मिला देने पर चतुर्थ स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी संख्या तो वही होगी, 16, 20, 24, 28, 32 वगैरह। इस प्रकार प्रथम स्थान से दुगुनी वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए, यानी 16 से 32 तक होने तक यही बात चलेगी। इस प्रकार यव मध्य की अधस्तन सब गुणहानियों का अलग अलग एक एक गुणहानि के प्रति एक 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 अधिक के क्रम से भागहार कहना चाहिए। तो एक एक गुणहानि के लिए उन्होंने बता दिया। अभी वहां भी फिर दोबारा एक मिनट आठ करना, वो चार से ही भाग देना, 32 को भी गुणाने के काल से ही भाग देना है, फिर उसमें 32 में आठ मिला है ना, हाँ तो 40 हो गए। हाँ तो 40 को फिर पांच से भाग देना, यानी चार पांच छह सात इस तरह से ही हो गए वो। शंका, रूपाधिक भागहार के लिए अपनी गुनाहानी का नियम कैसे है? अपनी अपनी गुनाहानी का नियम क्यों बताया? तो कहते हैं क्योंकि प्रत्येक गुनाहानी के प्रक्षेप एक समान नहीं है, यानी भागहार ऊपर तक वही बढ़ाते नहीं गए हैं, अभी 32 संख्या आई तो फिर गुनाहानी का ही भाग दिया उसको, इसलिए रूपाधिक भागहार के लिए अपनी गुनाहानी का नियम बन जाता है। इसी प्रकार आगे भी कहना चाहिए, विशेष इतना है कि उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को एक अधिक गुनाहानी से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे प्रतिराशि रूप से स्थापित उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों में मिलाने पर द्विचरम योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है, ऐसा कहना चाहिए। देखो इसको पहले हम नीचे पढ़ेंगे तो ख्याल आ जाएगा, जो अभी हमने देखा उसी को फिर दोबारा अंकों में बता रहे। यहाँ रूपाधिक विशेषार्थ में यहाँ रूपाधिक भागार के क्रम से प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या लाई गई है। प्रत्येक योग स्थान की संख्या लाना इसी को अनंत रूपनिधा कहा था। सर्वप्रथम गुणहानी के काल का जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या में भाग देकर प्रथम प्रक्षेप प्राप्त किया गया है, और इसे जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या में मिलाकर दूसरे स्थान के जीवों की संख्या प्राप्त की गई है। फिर इस प्रक्षेप में एक मिलाकर उसका भाग दूसरे स्थान के जीवों की संख्या में देकर दूसरा प्रक्षेप प्राप्त किया गया है, और उसे उस दूसरे स्थान के जीवों की संख्या में मिलाकर तीसरे स्थान की संख्या प्राप्त की गई है। उदाहरणार्थ जो अभी हमने देखा उसी को दोबारा देखते हैं। गुणहानी के काल चार, उसका जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 में भाग देने पर चार लब्ध आते हैं, अतः यह प्रथम प्रक्षेप हुआ। इसे जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 में मिला देने पर दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या 20 होती है। फिर पूर्व प्रक्षेप चार में एक मिलाकर पांच का 20 में भाग देना चाहिए। इस प्रकार जो पुनः चार लब्ध आवे उसे दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या इस के ऊपर बिंदी देना 20 में मिला देने से तीसरे योग स्थान के जीवों की संख्या 24 होती है। इस प्रकार यह क्रम सर्वत्र जानना चाहिए, यानी अभी भागार भी 6 हो जाएगा, फिर 6 चौक 24, तो फिर 4 उसमें मिला देना। इस प्रकार यह क्रम सर्वत्र जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यव मध्य के आगे पूर्व के समान वहां के अनुरूप प्रक्षेप प्राप्त करके घटाते जाना चाहिए। यहां तो हम मिलाते गए, आगे घटाते जाना उसको, किंतु अंतिम गुणहानि में अंतिम स्थान से पीछे की तरफ प्रक्षेप का निक्षेप करते हुए लौटना चाहिए। यदि अंतिम गुणहानि से अगर हम ऊपर देखते हैं तो उसमें मिलाते जाना, जैसे हमने नीचे के ऊपर तक देखा था वैसे ऊपर अंत से अगर हमको देखना है तो उसमें भी हम मिलाते जाएंगे। रूपाधिक कहा ना, इसलिए वहां अंत के स्थान के जीवों की जो संख्या हो उसमें एक अधिक गुणहानि के काल का भाग देकर प्रक्षेप प्राप्त करना चाहिए, और उसे मिलाते हुए गुणहानि के प्रथम स्थान तक आना चाहिए। उदाहरणार्थ अंतिम गुणहानि के अंतिम स्थान के जीवों की संख्या 5 है, इसमें एक अधिक गुणहानि का काल 5 का भाग देकर एक संख्या प्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होता है। इसे अंतिम स्थान के जीवों की संख्या में मिला देने पर द्विचरम योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इसी प्रकार आगे भी एक एक मिलाते जाना चाहिए। उन्होंने पहले देखा था ना, यहां सर्वत्र पूर्व प्रक्षेप में एक एक बढ़ाकर उसके भाग द्वारा नया प्रक्षेप प्राप्त है, इसलिए इसे रूपाधिक भागहार कहा है। नीचे से भी ऊपर मध्य तक लाए, वैसे ऊपर से भी हम मध्य तक आएंगे तो वो रूपाधिक कहेंगे उसको। रूप यानी एक, भागार एक एक से बढ़ता है तो उसको रूपाधिक कहा। अब रूपोन भागार के द्वारा अनंत रूपनिधा का कथन करते हैं। ये और एक मेथड अलग है, रूपोन यानी कम करना, वह इस प्रकार है। अब यव मध्य के उसी को खंडित करके शुरू हो जाएगा। दो गुणहानियों से यव मध्य को खंडित कर, दो गुणहानि यानी 8 यव मध्य को खंडित करके 16 हो जाएगी। प्राप्त राशि को यव मध्य में से घटाने पर उसके दोनों पार्श्वों में स्थित जीवों का प्रमाण होता है। फिर पूर्वोक्त भागार से एक कम भागार द्वारा पृथक पृथक दोनों पार्श्वस्थ जीव निषेकों को खंडित कर प्राप्त राशि को उभय पार्श्वस्थ जीव निषेकों में से कम करने पर तृतीय स्थान के निषेक होते हैं। देखो हमने कितने पहले देखे थे, पहले दो गुणहानियों से जीव यव मध्य को खंडित किया था, 128-16 किया था। भागार कम करना है, सात लेना है, यानी वो तो 16-16 ही आना चाहिए। एक सौ बारह को पहले दो गुणहानि भागहार था, यानी 8 भागहार था, अब वो भागहार 7 बनेगा। दो गुणहानि से यव मध्य को इन्हें 128 को खंडित किया था, 128 डिवाइडेड बाय 8 16 थी। पूर्वोक्त भागार से एक कम भागार द्वारा यानी 7 द्वारा दोनों पार्श्वस्थ जीव निषेक, जीव निषेक यानी यहाँ योगस्थान को जीव निषेक है ना, उसमें जीवों के प्रमाण को, उसको निषेक कहा, तो 112 को खंडित करना है। तो 112 डिवाइडेड बाय 7 That is also equal to 16. हमने को 16-16 ही कम करने हैं ना, यानी 16 को 15 नहीं बनाना है, भागहार का प्रमाण चेंज करना है। पहले 128 को हमने 8 से भाग दिया था, अभी 112 को 7 से भाग देंगे, हाँ तृतीय निषेक आ जाएंगे। तो तृतीय निषेक 96 वाला आएगा। इस प्रकार दोनों ही पार्श्व भागों में गुणहानि के काल के समाप्त होने तक ले जाना चाहिए, यानी 4 बार ऐसा करना चाहिए। भागार कितनी बार कम करना, 4 बार ऐसा करें। गुणहानि का काल 4 है ना, 4 बार। इसी प्रकार शेष अधस्तन व उपरिम गुणहानियों का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। रूपोन भागार की एक गुणहानि नियमता में कारण पूर्व के ही समान कहना चाहिए। अब इसी को फिर दोबारा समझाते हैं, जो हमने अंकों में देखा है उसी को फिर समझाएंगे। आशय यह है कि जहां विवक्षित भागहार में से एक कम करके उससे आगे के स्थान की संख्या प्राप्त की जाती है, वह रूपोन भागहार होता है। उदाहरणार्थ दो गुणहानियों के काल 8 से एव मध्य 128 के भाजित करने पर प्राप्त हुई राशि 16 को एव मध्य में से घटा देने पर पार्श्वस्थ दोनों राशियां 112-112 प्राप्त होती है। फिर पूर्वोक्त भागहार में से एक कम करके 7 का भाग उक्त दोनों राशियों में देने पर जो 16 लब्ध आए उसे घटा देने पर तीसरे स्थान की राशि 96 प्राप्त होती है। फिर इस भागहार में से एक कम करके 6 का भाग 96 में देने पर 16 लब्ध आए उसे घटा देने पर चौथे स्थान की राशि 80 प्राप्त होती है। इसी प्रकार रूपोन भागहार के द्वारा सब स्थानों की संख्या ले आनी चाहिए। ये रूपोन भागहार हो गया। अब और एक रह गया, छेद भागहार। अब छेद भागहार द्वारा अनंत रोपनिधा का कथन करते हैं। अनंत रोपनिधा ने एक एक योग स्थान की संख्या जीवों की निकालते हैं। वह इस प्रकार है, प्रक्षेप भागहार से जघन्य योग स्थान के जीवों को खंडित कर लब्ध राशि को उसी में मिला देने पर द्वितीय स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। पुनः पूर्व भागहार के द्वितीय भाग का जघन्य स्थान के जीवों में भाग देने पर दो प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। देखो क्या कहते हैं, पहले हमने 16 को एक गुणहानी 4 का भाग दिया तो प्रक्षेप 4 आए, तो 4 मिला है तो 20 आ गए। फिर वो उसके आधे से भाग देना है, यानी 4 से भाग देने के बदले अभी 2 से भाग देंगे। किसको? 16 को 2 से भाग देंगे, 8 आए तो 16 में ही मिलाना है, हाँ तो 24 हो जाएंगे। हाँ देखो पढ़ेंगे इसको नीचे से दूसरी लाइन। पुनः पूर्व भागहार के द्वितीय भाग का जघन्य स्थान के जीवों में भाग देने पर दो प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। उनको उक्त जीवों में मिला देने पर तृतीय स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। पुनः पूर्व भाग के भागहार के त्रिभाग का भाग देने पर 3 प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। उनको उक्त जीवों में मिला देने पर चतुर्थ स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार गुणहानि के जितने स्थान हैं, उनके समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। हमने एक एक प्रक्षेप मिलावा है, यहाँ दो दो प्रक्षेप, 3 प्रक्षेप, 4 प्रक्षेप मिलाए, इस तरह से हो जाए। इस प्रकार सब गुणहानियों के छेद भागहार को देखना चाहिए। गुणहानि योग के विशेषार्थ इसी को अभी संदृष्टि में बताएंगे। अंक संदृष्टि की अपेक्षा प्रक्षेप भागहार का प्रमाण 4 है। इसका जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 में भाग देने पर 4 ही लब्ध आते हैं, अतः इसे 16 में मिला देने पर दूसरे स्थान के जीवों की संख्या 20 आती है। फिर पूर्वोक्त भागहार 4 के आधे अर्थात 2 का जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 में भाग देने पर प्राप्त हुए 2 प्रक्षेप 8 को जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 में मिला देने पर तीसरे स्थान की संख्या 24 आती है। अब 4 का तीसरा भाग करना है ना, पूर्वोक्त भागहार का तीसरा भाग जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या में देने पर 4 तृतीयांश का भाग देना, यानी 3 चतुर्थांश से गुणा करना, यानी 12 आएंगे ना, 16 × 3/4 = 12 आ जाएंगे। प्राप्त हुए 3 प्रक्षेप, यानी 4 4 4 3 प्रक्षेप मिले। पूर्वोक्त राशि 16 में मिला देने पर चौथे स्थान की संख्या 28 आती है। इसी प्रकार सब गुणहानियों में जानना चाहिए। ये तो अनंत रूपनिधा यानी एक एक योग स्थान की संख्या कैसे निकालने उसके लिए ये सारी मेथड आई। अब यहाँ ये परम परोपनिधा का कथन करेंगे यानी डायरेक्ट गुणहानि से गुणहानि तक जंप करके बताएंगे। वह इस प्रकार है, जघन्य योग स्थान के जीवों से श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर जीव दुगुणे होते हैं। यानी एक गुणहानि के बाद जो हमने चार देखा था वो श्रेणी का असंख्यात भाग स्थान जाकर जीव दुगुणे हो जाते हैं। फिर भी उतने ही स्थान जाने पर जीवों की दुगुनी वृद्धि होती है, जैसे हमने 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। इस प्रकार यव मध्य तक ले जाना चाहिए। यह आसान है ना? उससे आगे उतने ही स्थान जाकर जीवों की दुगुनी हानि होती है। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों की संख्या प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, दुगुनी दुगुनी हानि यानी आधी आधी होना। एक जीव दुगुण हानि प्रमाण स्थान जाकर यदि एक गुणहानि शलाका प्राप्त होती है, ये दो गुणहानि कहो या दुगुणहानि कहो, गुणहानि का अर्थ है दुगुणहानि। एक जीव दुगुणहानि प्रमाण स्थान जाकर यदि एक गुणहानि शलाका प्राप्त होती है तो सब योगस्थान अध्वान में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार गुणहानि का फल राशि से गुणित इच्छा राशि में भाग देने पर सब गुणहानि शलाकाएं आती है। ये तो नाना गुणहानि कितनी है उसकी संख्या आएगी। इतने स्थान जाकर एक गुणहानि होती है तो टोटल स्थानों में कितनी गुणहानि होगी। ये दुगुण वृद्धि शलाकाएं पल्योपम के असंख्यात भाग मात्रा, ये पहले उन्होंने बताया था कि सभी जो योग स्थान में है उसमें ये गुणहानि कितनी है नाना गुणहानि, तो पल्य के असंख्यात भाग। तो यह किस प्रमाण से जाना जाता है? परम गुरु के उपदेश से जाना जाता है। अब इसी का विशेषार्थ देखेंगे। जहां परंपरा से हानि या वृद्धि प्राप्त की जाती है उसे परंपरोपनिधा कहते हैं। गुणहानि गुणहानि की बात की ना हमने, जहां दुगुनी होती इतने स्थान जाने पर दुगुनी होती, उतने स्थान उससे दुगुने होते, उतने स्थान जाने पर उसके दुगुने होती है, इस तरह से बताया। प्रकृत में इसी बात का निर्देश किया गया है। पहले एक गुणहानि से दूसरी गुणहानि में जीवों की संख्या किस प्रकार दुनी दुनी होती जाती है इसका निर्देश किया गया है, और बाद में जीव यवमध्य से लेकर वह संख्या प्रत्येक गुणहानि में किस प्रकार आधी आधी होती गई है यह बतला गया है। और यहाँ परंपरा से हानि और वृद्धि के क्रम का निर्देश किया गया है। बाकी बात कल करेंगे हम, क्योंकि यहाँ इसी का और आगे थोड़ा विशेष समझाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा दे तो। विनोद भाई।